एनजीओ चला रहा हूँ जिसमें मैं मदद करता हूँ लोगों की जो कि नशे का शिकार हैं, और उन औरतों की मदद करता हूँ जो किसी जहनी परेशानी के शिकार रहे हैं। तो मेरा पैन नेम आरिफ मगरिबी खान है। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट की कहानी बताना चाहता हूँ जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। घर में उनको प्यार से सुहेल कहते हैं क्योंकि वो क्रिकेटर आमिर सुहेल पाकिस्तान के एक रहे हैं, उनके बहुत बड़े फैन रहे थे। ये मेरे पेशेंट थे, क्रिकेट बहुत खेला करते थे और वो भी श्रीनगर के ही रहने वाले हैं। उनकी उम्र 18 साल थी जब उनके वालिद थे वो गुजर गए थे, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा दचका जैसा था और वो बर्दाश्त न कर सके। तो ये एक ऐसी उम्र होती है कि जब फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, कि जो फ्रेंड्स थे कुछ ने उनको कहा कि आप सिगरेट ले लो ताकि जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो कुछ देर तक वो सिगरेट लेता रहा, शौक से लेता रहा, और उसे लगा कि उसकी परेशानियां कुछ कम हो रही हैं। 16 महीने तक वो सिगरेट पीते रहे और उनको ये ठीक लगा, उनको कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन तो उनको लगा कि नहीं, खाली सिगरेट पीने से जो मेरे जहन में परेशानी है वो कंट्रोल नहीं हो रही है सिगरेट से। फिर वो एक बार डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गए जब उनको खांसी आ रही थी, तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप सिगरेट ना लिया कीजिए, ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आप यंग हो, 18 साल के हो। लेकिन उनको उस वक्त क्योंकि बहुत यंग थे उन्होंने रियलाइज नहीं किया और उसको सिगरेट वो पीते रहे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो देर से घर आ रहे थे और उनके पास कुछ हाथ में पैसे नहीं थे, कुछ 50 रुपए के करीब होंगे। तो वो एक जगह पहुंच गए, एक जगह है श्रीनगर में है, एक तालाब है वहाँ जो है कि इस वक्त शाम के वक्त फिर वहाँ जुआ खेलते हैं लोग जिनको उसमें ऐसे इंटरेस्ट हो, ऐसे ही लोग थे। अब उनका घर वहीं से पड़ता था, तो अचानक वो एक ऐसे आदमी से मिले, उन्होंने उससे सीखा है कि आपके पास सिगरेट तो नहीं है, मतलब जिसमें निकोटीन है वही वाला सिगरेट। लेकिन उसने कहा कि नहीं भैया, हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको क्यों चाहिए। उसने उसको आप जो अपने दिल का हाल था बता दिया। उसने बोला आप ये नहीं करो, मैं आपको दूसरे किस्म का एक सिगरेट देता हूँ जिससे आपके सारे गम दफा हो जाएंगे। तो उसने इसको 50 रुपए दिए, कहा कि ले लो। पता नहीं, नहीं मुझे पैसे भी नहीं जरूरत है। तो पहली बार जब उसने वो सिगरेट पिया तो वो बहुत कड़वा उसको लगा और वो थोड़ा सा बेहोशी की हालत में चला गया। तो फिर बाद में उसको पता चला कि ये सिगरेट जो था जिसको हम इंग्लिश में कैनबिस बोलते हैं, यानी कि चरस का सिगरेट था। तो अब क्या हो गया कि अब इनको उसको लत लग गई चरस पीने की, तो वो फिर चरस पीते रहे। अब पहली बार तो जिस आदमी ने उनको मुफ्त दिया था इस बार मुफ्त उन्होंने नहीं दिया, दूसरी बार उनको 100 रुपये मांगे, तीसरी बार 300 रुपये मांगे, 400 रुपये मांगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आगे आगे मतलब उनका ड्रग का डोज इंक्रीज होता रहा। पहले जब उनको एक ही सिगरेट से तसली होती थी, अब 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, 4 सिगरेट, ये ऐसा ही चलता गया चलता गया। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इनकी सेहत बहुत खराब हो गई, इनके घर वालों को शक होने लगा। तो शक हो गया जब उनको, तो उनको घर वालों ने उनको पैसे देने बंद कर लिए, कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते हो, आप ही छोड़ दो। तो फिर जब उनको पैसे ही नहीं मिले तो उनने क्या किया कि जो घर में चीजें हुआ करती हैं जैसे बर्तन है, तांबे के बर्तन है या बाकी चीज है, कुछ कैश हुआ करता था घर में, वो लेते थे। तो वो अपने ही घर में एक अजनबी बन के वो रह गए। फिर जो उनकी वालदा थी, जो उनके बाकी बहन भाई थे, उन्होंने समझा कि ये इसको कहीं काला जादू तो नहीं किया है किसी ने या कोई ऐसी बात तो नहीं है। फिर वो पीर साहब बाकी लोगों के पास चले गए। लेकिन बदकिस्मती से ये एक ऐसी चीज है कि ड्रग एडिक्शन ऐसी चीज है, ये एक तकलीफ है, जिस तरह डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जैसे डायबिटीज को हमारे यहाँ का बोलते हैं कि शुगर है, जिस तरह उसको इलाज की जरूरत होती है इस तरह इसको भी बिल्कुल उसी तरीके इलाज की जरूरत होती है। फिर एक मकाम ऐसा भी पहुंच गया कुछ साल के बाद कि फिर खाली चार से भी नहीं फर्क पड़ती थी। फिर उनको लाना पड़ता था, अल्कोहल भी लाना पड़ता था, नींद की दवाई भी लानी पड़ती थी, और कफ सिर्फ जिसमें कोडिन होता है वो भी वो लाया करते थे, तब जाके उनको तसल्ली होती थी। तब जाके उनको नींद आती थी, तब जाके वो थोड़ा बहुत नॉर्मली बिहेव कर पाते थे, नहीं तो उनका ये रोज का ये बन चुका था कि बर्तन फेंकना, घर वालों के साथ लड़ाई करना, छोटों के साथ मारपीट करना, बड़ों के साथ गुस्ताखियां करना। फिर कुछ वक्त ऐसा भी आ गया कि घर वाले को जब शादी पर जाना होता था तो घर वाले को शादी के कार्ड भेजते थे रिश्तेदार उनको, वो कहते थे कि आप आ जाए, आप हमारे साथ आपको भरे, लेकिन ये जो आपका बेटा है इसको पुलिस ना लाएगा वहां, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा एक दुख की बात रही। इवन जो उनके मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी पता चला, तो जो भी वो चलते थे वहां से कहीं से कभी कुछ खाने की चीज लाते थे, कुछ कहते थे, वो कह रहे थे क्योंकि बच्चों को पूरा अभी समझ नहीं आता था, वो कह रहे थे अरे देखो जी शराबी आ गया, अरे देखो जी शराबी आ गया, लेकिन उनको इस बात का कोई असर ना रहा उनको। हाँ ये बात सच है कि उन्होंने एक दो बार कोशिश की छोड़ने की, जो ये नशा लेते थे सब नशे को एक ही वक्त छोड़ने की कोशिश की, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर इंसान कभी नशे को छोड़ना चाहता है तो एक ही वक्त नहीं वो छोड़ सकता, बंद नहीं कर सकता है, उसको बाजाबता एक रिहेबिलेशन सेंटर में जाना चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने जब नशा छोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, उनने बोला कि मुझे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, दर्द कमर में होता था, पसीने पसीने में हो जाता था और डिसोरेंटेशन जैसी हो जाती थी। फिर एक दिन की बात है कि उनको लगा कि वो एक दिन तक सोए हैं, उन्होंने अपनी कुक से कहा मुझे आज लगता है एक ही दिन तक मैं सोया, लेकिन आज मुझे भूख लगती है ऐसी कि मैं जैसे बहुत दिन से खाया नहीं हुआ हूँ। कुक ने उनसे बोला कि बेटा आप एक दिन नहीं सोए, आप 3 दिन नशे में, इतना आपने का आपका नशा हो चुका था कि आप 3 दिन तक सोते रहे। तो जब ये बात उनसे हुई तो ये इनको एक मतलब एक रिमाइंडर जैसा, एक रूड रिमाइंडर जैसा आ गया। उनको ये लगा कि वो पहले घर वालों के चहेते थे, रिश्तेदारों के चहेते थे, मोहल्ले वाले उनको कदर की नजर से देखते थे, तो उनको लगा कि नहीं अब मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता हूँ जिसमें मुझे ये भी ना पता रहे कि मैं कितने दिन तक सोता रहा। तो फिर उनने एक घर वालों से बात की, फिर वो एक डॉक्टर साहब के पास चले गए जहाँ उनको नशे के बारे में बताया कि ड्रग एडिक्शन होती क्या है, उनके घर वालों को भी समझाया कि आप इसको ट्रीट करो एज अ डिजीज ट्रीट करो, इसको काला जादू ट्रीट नहीं करो। ट्रीट करने के लिए उनको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो उनको एडमिट रहना पड़ेगा 10 से 15 दिन तक, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो उनको ये दिए हिदायत दी और डॉक्टर साहब ने भी जो थे उन पर बहुत मेहनत की और काउंसलर्स ने भी मेहनत की, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर 9 से स्टार्ट की। वो एक प्रोफेशनल कॉलेज चले गए जहाँ उन्होंने एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल की, बहुत ही ईमानदारी से काम किया और उन्होंने इस वक्त एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मैं कहता हूँ आपकी कोई मैसेज है जो नशा ले रहा है, वो मुझे यही कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के बॉलीवुड के एक फेमस फिल्म एक्टर रहे हैं संजय दत्त, अगर वो नशा छोड़ सकते हैं, अमेरिका के एक टेनिस स्टार रहे हैं एंड्रे अगासी, वो छोड़ सकते हैं, उनका भी दिमाग वही है, उनका भी जिस्म वही है और हमारा भी जिस्म वही है, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और जब मैंने इनसे इजाजत मांगी कि मैं उनकी ये कहानी बताऊं तो उनने कहा कि हाँ आप बताएं, क्योंकि अगर ये कहानी सुन के 100 में से 1 नशा करने वाला भी अपने रवैये पर नए से सोचे और वो नशा छोड़ देगा तो ये उसके लिए उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी और उन्हें लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़े कोई इबादत का काम किया है।
तो समीन, ये कहानी थी एक नशे के आदी शख्स की, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि आदत को छोड़ा बल्कि आगे बढ़े ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे जैसे कि उनकी ज़िंदगी शुरू हुई थी, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी इस कहानी को शेयर करने की इजाज़त भी दी, जो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी कहानी सुनाने का मुझे, क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम टेलीविज़न पर भी जाता है तो साथ साथ हम कुछ देख रहे थे आपके फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं जो आपने हमें भेजी थी, तो एक गाड़ी इसमें नज़र आई जिसका शीशा टूटा हुआ था, तो इसकी कोई ख़ास वजह टूटे हुआ शीशा होने की? डॉक्टर अर्शद, अंजू, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक प्रोमो सुन लेते हैं और पते ताकि लोग नोट कर लें, इतने दौरान आप चेक भी कर लेंगे डॉक्टर साहब क्यों हमारी बात नहीं सुन पा रहे। तो चलते हैं प्रोमो की तरफ सामीन, और आप तैयार रहिए पते लिखने के लिए ताकि आप हमें ख़त लिख सकें और कहानियाँ भेज सकें।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो सामीन पते आपने नोट कर लिए होंगे और एक दफा फिर कोशिश करते हैं। डॉक्टर अरशद आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी बिल्कुल सर।
अच्छा 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 डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि, लेकिन खैर मेरे सवाल से पहले हम 2 कॉलर्स को ले लें क्योंकि कॉल्स हमारी आज ज़रा मुश्किल से मिल रही हैं। गुलाम मोहम्मद साहब हैं सरगोधा से। जी गुलाम मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद साहब इनको भी शायद आवाज़ नहीं आ रही। लाल सैयद आफरीदी साहब हैं खैबर एजेंसी। जी लाल सैयद आफरीदी साहब, वालेकुम सलाम आफरीदी साहब,
कैसे हैं शहनाज भाई? अच्छा
जी 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 बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ
श्री ने, इससे पहले मैं सवाल भी पूछूंगा, लेकिन ये जो सुबह का प्रोग्राम है 6 बजे, ये बिल्कुल सुनाई नहीं देता, आवाज डूबती है, उभरती है, कभी गायब हो जाती है। और दिलचस्प ये वहाँ से फर्स्ट प्रोग्राम दीवान सर होता है, वो बिल्कुल साफ सुनाई देता है, इसका कुछ
अच्छा यानी हमारा जो प्रोग्राम यानी जो हमारी नशरियात नशर मुकर्रर जो है जो दोबारा सुनाई जाती है वो नशर
जी बिल्कुल वो सुनाई नहीं देता सुबह 6 बजे।
अच्छा, हालांकि दीवा की नशरियात भी उसी फ्रीक्वेंसी पे हो रही है हमारी वाली पे, तो मैं जरूर जरूर आपकी शिकायत, आपने कहा सुबह 6 बजे जो प्रोग्राम आपके यहाँ सुनाई नहीं दे रहा ना, बिल्कुल मैं आपकी शिकायत पहुँचा दूंगी और शुक्रिया बताने का, क्योंकि इसी तरह से हम बेहतर बना सकते हैं चीज़ों को। जी तो आप डॉक्टर अरशद से कुछ पूछना चाहेंगे आफरीदी साहब? अच्छा आफरीदी साहब की कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब मौजूद।
उसके नशे के या नहीं, जो उनके दोस्त थे जिन्होंने उसको इस लानत से आशना कराया था, उन लोगों को उसने छुड़वाने की कोशिश नहीं की?
अच्छा मैं ये सवाल पूछ लूँ, ये आफरीदी साहब हैं गुलाम मोहम्मद साहब हैं?
आफरीदी।
अच्छा आफरीदी साहब ठीक है।
शहनाज बहन एक बात बीच बीच में मैं और भी पूछूंगा, वो मेरी जो कहानी थी वो जिसकी बात भी हुई थी मेरे मुझसे आपकी, तो वो रिजेक्ट हो गई है या उसकी बारी नहीं आई? वो तेजाब वाले
नहीं, उसकी बारी नहीं आई अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत सी कहानियां हैं और आपकी चूंकि बहुत दिन नहीं हुए तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा गैप आ जाए उसके बाद कहानी, लेकिन रिजेक्ट नहीं हुई, आपकी कहानी अच्छी थी वो, शुक्रिया बहुत बहुत।
अच्छा वो वही कहानी ना जिसका आपने मुझसे जिक्र भी किया था ना, वो खाना बदोश वाली लड़की के साथ साथ और कहानी थी।
जी मैं समझ गई, आपने तेजाब वाली कहानी जो भेजी थी मुझे याद है, आपने पहले भी बात पूछी थी तो मैंने बताया था आपको एक अच्छी कहानी है, तो शुक्रिया बहुत बहुत। और गुलाम मोहम्मद साहब हैं सरगोधा से। जी गुलाम मोहम्मद साहब।
जी हाँ भाई।
जी भैया बोलिए।
गुलाम मोहम्मद सरगोधा से बोल रहा हूँ।
जी जी क्या पूछेंगे?
हाँ आज किसके बारे में बोल रहा हूँ क्या?
मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो अपना आप रेडियो बंद कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब आप ज़रा पहले जिस दौरान ये थोड़ा सा रेडियो वगैरह बंद करें, आपसे पहले उन्होंने सवाल पूछा था लाल सैयद आफरीदी साहब ने कि उनके जिन दोस्तों ने उनको ये लत लगाई थी, हम उन्हें सुहेली कहेंगे, तो क्या आपने उनके उन पर भी कोशिश की काम करने की कुछ?
नहीं
جی بالکل. میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی میرے پاس کوئی میں مریض ان کو نہیں کہتا ہوں, میں ان کو دوست کا نام دیتا ہوں.
اچھا.
تو اگر میرے پاس کوئی ایسا دوست آتا ہے تو پہلے میں اس کو ٹھیک کر کے دیتا ہوں, یعنی کہ اس کی لائف میں چینج کرتا ہوں.
ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ایسے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتے ہیں تو وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ کل تک تو یہ دن بھر نشے میں رہتا تھا, اس کی کوئی عزت نہیں تھی, آج اس کی یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی ہے. تو وہ پھر خود اس کے تھرو آتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ علاج ہو جائے. اور میں نے یہ کہہ کہ ان کو بہت ہی واضح کر لیا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ میرے پاس ہی آؤ, آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. تو اس میں سے جو بھی جو مینلی اس میں انوالو چار تھے ان کے دوست تھے.
اچھا.
تو اس میں سے تین تو چلے گئے کیونکہ کشمیر میں یہ تھوڑا سا سٹیگما جیسا رہتا ہے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے. تو دو تو باہر چلے گئے آؤٹ سائڈ کشمیر ٹریٹمنٹ لینے کے لیے, اور دو نے یہاں ہی ٹریٹمنٹ کرا لی.
اچھا. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ کی این جی او ہے تو کیا آپ کے یہاں جو علاج معالجہ ہوتا ہے وہ مفت ہوتا ہے یا کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں؟
جی یہاں ہمارے جو کشمیر وادی کشمیر میں یہاں دو زمرے آتے ہیں, ایک ہے بی پی ایل یعنی کہ بلو پاورٹی لائن, جن کی جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ان کے لیے ہمیں علاج مفت رکھا ہے.
اچھا.
پھر دوسرے ہم نے رکھا ہے کہ جو کوئی آرفن ہو اس کا علاج بھی مفت ہے.
اچھا.
ہاں اب کوئی اگر کوئی بہت امیر آدمی ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ ہے کوئی ہے, تو وہ اس کے لیے ہم نے ایک منیمل چارجز رکھے ہیں تاکہ جو ہمارے رینٹ ہے وہ نکل جائے, جو باقی میڈیسن پر خرچ آتا ہے, کیونکہ عموماً ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے ہم جو باقی ہیں اشخاص ہیں جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں, تو ان سے ایک نارمل فی لیتے ہیں جو کہ ہم پھر یوز کرتے ہیں ان غریب پیشنٹس پر.
اچھا. تو آپ نے کہا کہ پاورٹی کی سطح سے نیچے یعنی غربت کی سطح سے نیچے, لیکن اس کے بیچ میں بھی ایک کلاس ہے جو کہ مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس, تو دراصل تو ان میں شعور بھی ہے نسبتاً اور وہ غریب بھی ہیں ساتھ ساتھ. مطلب جیسے مجھے اندازہ ہے کہ کشمیر میں جو پہلے مڈل کلاس ہوتی تھی وہ بہت غریب ہو گئی ہے, ہر جگہ یہ حال ہوا ہے, پاکستان میں تو بہت بڑے پیمانے پر ایسا ہوا ہے. تو کیا ان لوگوں کے لیے مفت علاج نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو جو آپ نے کہا کہ کلنک کا احساس ہے وہ بھی ان میں زیادہ ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو جو بیچ کی کلاس ہے اس کا کیا ہوتا ہے, اسے آپ پیسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟
نہیں, ان کا بھی یہ ہے کہ ان میں جو افورڈ کر سکتا ہے.
اچھا.
ان کا اگر افورڈ کوئی کر سکتا ہے تو ہم ان سے لیتے ہیں. ہمارا اور یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ایون اگر میرے پاس کوئی آتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کانفیڈینشلی اپنا علاج کرنا چاہتا ہے, ان کے پیرنٹس بہت امیر ہوتے ہیں لیکن اس کی وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ علاج کرنے جا رہا ہے تو اس پر اتنے پیسے خرچ ہوں گے. تو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس میں کوئی. اگر ایون کوئی بہت زیادہ امیر ہے اور اپنے ماں باپ سے وہ چوری چوری علاج کروانا چاہتا ہے, ان کے لیے بھی جو ہم نے سہولیات رکھی ہیں مفت رکھی ہیں. سیم از دا کیس جو مڈل کلاس ہے جو کہ ایک بہت بڑا چنک آتا ہے پاپولیشن, تو ان کے لیے بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں اچھی بات ہے, اگر نہیں تو اس سے بھی اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے, اس کا پورا ایک یعنی ایک ڈسپلن ہے اس کا پورا ایک. تو کتنا خرچ آتا ہے اگر ایک آدمی شروع سے علاج کرنے کے لیے آئے تو آخر تک جب صحیح معنوں میں بالکل اس کا صاف ہو جائے معاملہ؟
ڈیپینڈ بیسکلی کرتا ہے کہ کس قسم کا وہ نشہ لے رہے ہیں.
اچھا.
اگر وہ ایک ہی قسم کا نشہ لے رہے ہیں تو نسبتاً آسانی ہو جاتی ہے, لیکن اکثر میرے ہمارے پاس جو کشمیر میں پیشنٹس ہیں ڈرگ ابیوز کی, تو یہ تین چار ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں, چرس نیند کی دوائیاں, باقی شراب ہے وہ لیتے ہیں, افیم لیتے ہیں, تو ملٹیپل ڈرگ ابیوزرز ہوتے ہیں, ایک ڈرگ کا یوز نہیں کرتے ہیں. تو ایوریج آن ایوریج ان کو 30 ڈیز رہنا پڑتا ہے ہاسپٹل میں.
جی.
پہلا فیز اس میں یہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی نشہ چھوڑنا چاہے تو اس کو وڈراول سمٹمز آتے ہیں, کیونکہ اس کی باڈی کو عادت ہو گئی ہوتی ہے نشہ کرنے کی, تو جب اس کو نہیں ملتا ہے تو اس کو بہت پینفل وڈراول سمٹمز ہوتے ہیں. جس میں اگر صحیح وقت پر دوائی نہ دی جائے تو پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ایک سائنٹیفک ٹرم ہے آرٹیریل فائبریلیشن، یعنی کہ دل کی دھڑکن کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، 300 یا 400 ہو جاتی ہے ایک منٹ میں. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. پہلے 5-6 دن ہم اسی چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو وڈراول سمپٹمس ہیں یہ نہ آئیں.
تو یہ جو دھڑکن ہو جاتی ہے، میں ساتھ ساتھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے، کیونکہ لوگوں کے دل میں بھی سوال ہوں گے. تو جیسے دل کی دھڑکن اتنی جب بڑھ جاتی ہے تو اس میں کیا اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے دل بند ہو جائے یا کوئی بہت ہی ڈیمیجنگ اس پہ اثر پڑے دل پر؟
بالکل، اگر یہ ایک ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں یہ نہ کیا جائے یا کہیں ریہیبلیٹیشن ہے جہاں کے ماہر ڈاکٹر ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کمپلیکیشن آ سکتی ہیں. اور بہت سے کیسز یہاں ہمارے کشمیر میں بھی ایسے ہوئے ہیں جہاں ماں باپ نے ٹانگ آ کے بچوں کو بند کیا ہے ایک کمرے میں
جی،
اور کہا ہے کہ آپ اسی میں بند رہو، آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں.
شرم کے مارے
جب وہ جی جب ان نے 2-3 دن کے بعد دروازہ کھولا ہے تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے.
اچھا، یعنی وہ یہ سمجھے کہ اگر بچے کو بند کر دیں گے تو پھر اس پہ وہ ڈرگز نہیں لے سکتا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ یہ نہیں سمجھے گا.
بالکل.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ڈرگز پہ سوال کرنا چاہتے ہیں. اسرار احمد ہیں خاران سے. جی اسرار صاحب، السلام علیکم. اسرار صاحب، اسرار احمد،
آپ لوگوں کا پروگرام سن رہا ہوں.
جی
بڑا ہی اچھا پروگرام ہے. میرے پاس ادھر ایک بندہ ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے
جی،
کافی عرصے سے وہ بس کے لت لگ گئی ہے اس کو. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے، اگر کوئی اچھا ادارہ ہو. یہاں بلوچستان میں اس کا علاج کروایا لیکن
ڈاکٹر صاحب آپ ان سے بات کر سکتے ہیں براہ راست اگر کچھ پوچھنا چاہیں.
جی میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے یہاں کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جہاں ذہنی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر یہ سینٹر وہیں آباد ہوتے ہیں.
یہاں خاران میں تو نہیں ہے، میں دوسرے شہروں کا تو نہیں کہہ سکتا کوئچہ وغیرہ کا، لیکن خاران میں نہیں ہے سر.
تو اسرار، ان کو لت کون سی ڈرگ، مطلب کون سی نشہ استعمال کرتے ہیں وہ؟
میڈم کبھی اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی افیم استعمال کر رہا ہوتا ہے، کبھی چرس پی رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ بھنگ وغیرہ اس طرح سے. بہت اچھا بچہ ہے لیکن بس کیا کریں، ماحول اس کو اچھا نہیں ملا شاید.
مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا بچہ ہے، کیونکہ اس سے ایک بچہ خراب نہیں ہو گیا. اگر ایسا ہے اس کو دیکھیں نا، کوئی بھی چیز کی بری چیز کی آدمی کو عادت تو پڑ سکتی ہے نا، اس کی صحیح ہے، محبت سے ہی چھڑایا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جیسے کئی نشے استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے کہا وہ اسی سے کمپلیکیشن ہوتی ہے، تو کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں جو ایدھی سینٹر ہیں عبدالستار ایدھی کے، جو ان سے قریب ترین شاید کراچی ہو سکتا ہے کیونکہ بلوچستان میں ہے، تو وہاں ہے کچھ یہ سلسلہ نشے کے عادی افراد کے علاج کا؟ آپ نے کچھ معلوم کر کے دیکھا اسرار وہاں پر؟ نہیں میں ان سے پوچھ رہی ہوں اسرار سے، لیکن آپ مجھے ڈاکٹر صاحب چلیے آپ بتائیے مجھے یہ بات کہ کیونکہ ان کے آس پاس اگر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کوئی ذہنی اس کا، تو پھر کیا کر سکتے ہیں اس بچے سے؟ ایک گھریلو طور پہ کچھ ہو سکتا ہے؟
جیسے آپ نے بہت صحیح بات ابھی کہی، یہ میں بول ہی گیا تھا لیکن آپ نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ ہمیں نشے کی لت سے نفرت کرنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں سے جو نشہ لیتے ہیں.
جی
اس طرح نے کہا کہ وہ اچھا بچہ ہے، پریشانی ہوگی تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں وی مسٹ ہیٹ ڈرگ ایڈکشن ناٹ ڈرگ یوزر. تو سب سے بڑی بات ہے کہ پیار جتنا اس کو ملے، جتنا اس کو سیلف ریسپیکٹ ملے، جتنا اس کو عزت کی جائے گھر میں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر ان کے یہاں کوئی ڈاکٹر ہے، جنرل فزیشین ہے، وہ بھی علاج کر سکتا ہے ان کا. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہاسپٹل میں ہی کہیں ایڈمٹ رہے، اسے چانسز کم ہوتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد وہ پھر اس نشے کو یوز کرے، کیونکہ وہ کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں رہتا ہے.
آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک ذکر کیا کہانی میں، یعنی جو سنا رہے تھے سہیل اپنی کہانی، تو اس میں یہ ذکر آیا کہ ایک ایسی دوا دی جس سے آپ کو نفرت ہو جاتی ہے ڈرگس سے، تو کیا وہ دوا بغیر کسی ڈاکٹر کے سپرویژن کے استعمال کی جا سکتی ہے، یا ضروری ہے کہ کسی ڈاکٹر کے سپرویژن؟
ایک رول ہے کہ نشہ چھوڑے ہوئے اس کو 10 دن ہونے چاہیے.
اچھا
ٹھیک ہے، اگر 10 تاریخ کو اس نے آخری بار نشہ کیا ہے تو 20 تاریخ کو ہم اس کو وہ دوائی دے سکتے ہیں، بیچ میں 10 دن کا وقفہ ہونا چاہیے.
تو
اگر ابھی اگر اس نے پہلے 10 تاریخ کو نشہ کیا ہے اور 12 تاریخ کو لے گا تو ریئیکشن ہو سکتی ہے، جو بھی بہت سیویئر ریئیکشن ہو سکتی ہے.
اچھا،
تو اس لیے ہاسپٹل میں ہی دی جاتی ہے اور ایک ڈاکٹر کے زیر نگرانی میں دوائی دی جاتی ہے.
اچھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کیا مطلب کہ پوچھنا چاہیے مجھے یا نہیں پوچھنا چاہیے، کبھی کبھی خطرناک ہوتا ہے دواؤں کا نام بتانا، مگر کیا ڈاکٹر صاحب وہ دوا ایسی ہے کہ جسے خرید سکیں جا کے خود ہی کیمسٹ کے پاس سے یا فارمیسی سے جا کے نشے کو ختم کرنے کی دوا، یا خطرناک ایسی دوائیں خریدنا خود سے جا کر؟
نہیں، میں تو سمجھوں گا کہ اگر کوئی مطلب جلد بازی میں کام لے اور وہ دوائی خریدی وہ نجات پانا چاہتا ہے تو اسے اس کی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں.
اچھا،
تو بہتر رہے گا کہ کوئی بھی ایکسپیرئنس گزرو پیشن ہوگا اس کو پتا ہوگا اس دوائی کے بارے میں.
اچھا،
اور وہ یہ شور کر لے گا کہ 10 دن کا وقفہ ہوا ہے کہ لاسٹ ڈوز جو اس نے نشے کا لیا ہوا ہے تو وہ اس کو پرسکرائب کر سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ کے ساتھ یہ ہے کہ چیک کرنا، کیونکہ اگر کسی پیشنٹ کو کہہ دیا آپ 10 دن گھر میں ہی بیٹھے رہو اور یہ دوائی اور نشہ نہیں لینا، اس کے بعد ٹیسٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اسے پتا چلے گا کہ سچ میں کہ اس نے نشہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا.
درست، میں ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گی، میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے ملکوں میں بلکہ یہاں مغرب میں بھی، کہ جو کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے ایک تکلیف دہ بات تو ہوتی ہے جیسے کہ پہلے ہم نے کہانی میں دیکھا، لیکن اگر آپ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، اگر آپ اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ وہ انسان ہی نہیں رہا، آپ اس سے اتنا کمتر سلوک کرنے لگیں گے اور ہر بات پہ اسے یہ کہیں گے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو نشہ ہی ہے، تو پھر وہ سچ مچ کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایک نارمل انسان کو بھی جو کچھ نشہ نہیں کرتا، اگر آپ ہر وقت اس کی خامیاں بتائیں گے تو آخر میں وہ جیسے بچے ہکلانے لگتے ہیں جب آپ بچوں کو ہر وقت ڈانٹتے رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے رہے ہیں. تو پلیز محبت کرنا ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور لوگوں کی خامیوں کو معاف کرنا. اچھا، ہمارے 2 کالرز اور ہیں، عبدالغفار ہیں گھوٹکی سے. جی غفار صاحب، السلام علیکم.
السلام
جی. وعلیکم السلام.
جی جی
جی، کیا پوچھ رہے ہیں؟
ہلو.
جی جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے غفار صاحب. بولیے آپ. جی بولیں کچھ. بولیے جی آپ بات کیجیے کچھ، میں سن رہی ہوں آپ کی بات، آپ بات کیجیے بھیا.
اچھا،
کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا، مرید خان ہیں میاں والی سے. جی مرید خان، مختصر.
جناب شناب جی، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بھیا.
ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ جو افغان کیمپ لگا تھا اس کی وجہ سے بہت زہر منشیات ہوئی ہے اور 300-400 بندے مر چکے ہیں، اور بغیر جوئے یہ نہیں جاتے ہیں 3-3 سال، وہاں ان کو نہیں ملتی، لیکن جب واپس آتے ہیں 3 سال کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ
میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک لت ہے اور اس میں غیرت کی، جب آپ نے دیکھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ سگریٹ بھی تو لوگ پیتے ہیں، وہ بھی تو ایک لت ہے، لیکن نہیں نہیں سنیے، ایک سیکنڈ، میں آپ کے سوال کا جواب پہلے ڈاکٹر صاحب سے لے لوں. مرید خان صاحب، پہلے آپ سوال کا جواب دیجیے. ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ پوچھا ہے جو دراصل سوال ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں بجائے لیکچر دینے کے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ڈرگس کی خرابیاں کیا ہیں، اور آپ یہ بتائیے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 3 سال بعد آتے ہیں پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں ریہیب سے، تو کیا اس کس طرح اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ ریہیب کے بعد وہ جو ہے نا پھر پابندی رہیں نہ استعمال کرنے کے؟
جی، اس इसमें काउंसलर का रोल बहुत अहम होता है
जी.
अगर कोई डॉक्टर है जो डॉक्टर भी है और काउंसलर है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो काउंसलर का काम इसमें बहुत अहम है, क्योंकि काउंसलर उनको एक चार्ट बना के देता है, कहता है कि आपको किस किस चीज जब लाइफ में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आप नशे की तरफ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मुझे जब जब मैं एग्जाम की तरफ होता हूँ या फेल हो जाता हूँ एग्जाम में तो मैं नशे की तरफ चला जाता हूँ. तो वो भी रीत बना के देता है, मेंटली प्रिपेयर करके रखता है कि आपको जब जब ये प्रॉब्लम आएगी आप सॉल्व कैसे करोगे, आप प्रॉब्लम को मतलब
किस तरह उस पर काबू पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल.
अगर कोई फेल एग्जाम में हुआ है या लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक प्रॉब्लम है, तो आप नशा लेते हो तो एक और प्रॉब्लम ऐड हो जाती है, उसके साथ साथ मल्टीपल प्रॉब्लम ऐड हो जाती हैं. तो काउंसलर का इसमें बहुत अहम रोल रहता है. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब रिहैबिलिटेशन में इलाज लिया किसी सेंटर में तो उनको चाहिए कि वो 6-6 महीने के बाद वहाँ जाइए. बेसिकली साइंस में जो रूल है 3-3 महीने के बाद उनको जाना चाहिए, 3 साल तक. तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ कश्मीर में भी ऐसा नहीं होता है, पेशेंट 1 साल के बाद आता है या कभी 2 साल के बाद आते हैं. लेकिन जो बेसिक रूल है इसका जो और सक्सेसफुल जिसे हो जाता है वो 3 या 6 महीने के बाद सर जिन्हें इलाज किया है उनसे मिले और काउंसलर से मिले, ताकि वो उनको मेंटली प्रिपेयर करे कि अगर लाइफ में कोई और आगे आए तो वो उसको कैसे फेस कर सके ड्रग्स के बगैर.
अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूंगी आप हमारे साथ रहें, आपसे हम बहुत और भी बातें करना चाहते हैं. आज हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो भी डॉक्टर हैं और उनकी कोई मीटिंग्स थी और बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन हमने उनसे 10 मिनट का वक्त मांगा है. डॉक्टर अर्जुमन हाशमी हैं, पेरिस टेक्सास से हमारे साथ हैं, तो हम इनसे गुफ्तगू कर लें, उसके बाद हम चाहेंगे कि कुछ और लोग भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके आप जवाब दें, तो प्लीज़ आप हमारे साथ ही रहिएगा. अच्छा लेकिन मैं एक सवाल आपसे इस दौरान ये पूछना चाहती हूँ, ये जो दवाई के नाम की बात पहले हुई थी ना, तो क्या आप दवाई का नाम बताना चाहेंगे, वो जो दवाई होती है जिससे नफरत हो जाए आपको दवा के इस्तेमाल से?
मुझसे आप पूछ रहे हैं?
जी जी जी, आपसे पूछ रही हूँ.
हाँ हाँ, उसका नाम है नैफ्लोक्सोन, इसका सॉल्ट है.
अच्छा,
ये अलग अलग ट्रेड नेम से आती है, इंडिया में नैलटिमा ट्रेड नेम से आती है, इसका 50 mg का डोज होता है. और अगर आप किसी को लेना ही है पहले वो करे कि हाफ टेबलेट ले, आधे घंटे तक वेट करे, उसके बाद देखे फिर कोई ना हो जाए, फिर उसके बाद आधी टेबलेट और ले. इस तरह वो एक बराबर खाता रहे, उसके बाद वो देखे कितनी फर्क उसको आई है दवाई में. साल्ट का नाम है नैफ्लोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड.
जी ठीक है, हम एक दफ़ा अगर हमारे सुनने वाले नहीं समझ सके तो दोबारा भी हम पूछेंगे. डॉक्टर साहब, हम अब अर्जुमन हाशमी साहब को ले रहे हैं. अर्जुमन हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब आपका आवाज़ आ रही है मेरी?
जी हाँ, मुझे
जी
आवाज़.
अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम.
पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए, बड़ी देर से मुबारकबाद दे रही हूँ क्योंकि तीसरी दफ़ा आपका इंतखाब हुआ है मेयर का. आप जो पहली दफ़ा हुए थे तब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उसके बाद भी बीच में आना जाना कुछ रहा आपका, लेकिन दूसरे प्रोग्रामों में तो बड़ी खुशी की बात है. और आपने ज्ञात पता नहीं आपको है या नहीं कि आपने दावा किया था अगली दफ़ा जब आप मुंतखब होंगे तो आपको 66 से ज़्यादा मिलेंगे और आपको वाकई मिले वोट उससे ज़्यादा. तो इतना एतमाद कमी हमने देखा है, तो कुछ बताइए कि कैसा अब आप कैसा महसूस करते हैं? आपने तो अपने कस्बे को अपने शहर को बिल्कुल बदल दिया होगा, पेरिस को.
ऑब्वियसली बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और पर्टिकुलरली बिकॉज जब पता चलता है कि लोगों को आप में कॉन्फिडेंस है इतना आपको दोबारा इलेक्ट करें और तीसरी दफा इलेक्ट करें तो मजा आता है. ऑब्वियसली खुशी होती है कि और ख्याल आता है कि कुछ काम सही किया होगा जिसकी वजह से लोग वोट डाल रहे हैं.
नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया. मैं याद दिला दूं थोड़ा सा, बल्कि आप भी बताइए कि आपके यहाँ जो तनासुब आबादी का वो किस तरह का है, ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ सारे पाकिस्तानी या मुसलमान हों, बल्कि उनकी तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है गालबन आपके शहर में, है ना?
ज्यादातर वाइट पॉपुलेशन है
जी,
थोड़ा स्मॉल परसेंटेज है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है.
अच्छा.
और पाकिस्तानी पॉपुलेशन तो तकरीबन ना होने के बराबर है, बिकॉज मैं हूँ एक पाकिस्तानी और एक और हैं जो कि पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, उसके अलावा और कोई पाकिस्तानी नहीं है और कोई मुसलमान भी नहीं है एक्चुअली. वी आर प्रॉबली द वन ऑफ द टू मुस्लिम्स इन टाउन.
तो डॉक्टर साहब, जब कोई वाकया होता है तो बड़ा, जैसे कि कोई भी ऐसा वाकया जिसमें किसी हलाकतों में या किसी दहशतगर्दी में कोई मुसलमान का नाम सामने आए, तो लोगों को ये अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि उसका क्या रद्द अमल आपकी ज़िंदगियों पे होता है एक मुसलमान की हैसियत से या एक पाकिस्तानी की हैसियत से या एक अफ़गानी की हैसियत से. तो ये जो वाकया हुआ ऑरलैंडो में, इसमें जो इस शख्स ने इतने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार दिया, वो अफ़गानी निजात अमरीकी था, तो आपको कोई रद्द अमल नज़र, किस तरह का रद्द अमल नज़र आया आपको अपनी कम्यूनिटी में?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रद्द अमल हमारा अब ना पाकिस्तानी की तरह हो सकता है ना मुसलमान की तरह हो सकता है. रद्द अमल होना चाहिए
अमरीकी की तरह, दुरुस्त,
बिकॉज दैट इज़ वॉट वी आर नेचुरलाइज्ड अमेरिकन्स एंड वी नीड टू थिंक लाइक अमेरिकन्स. अच्छा, अब कोई भी दहशतगर्दी की कोई भी बात करे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, तकलीफ दे चीज़ें और बेवजह जान का ज़िया होना बहुत ही सख्त तकलीफ दे बात है. बिकॉज सिर्फ 50 लोग नहीं मरे, लाखों लोगों के ऊपर उसका असर पड़ा है.
और
ख़ास तौर पे जब एक मुसलमान आदमी ने किया है तो ऑब्वियसली सारे मुसलमानों पे असर पड़ा है उसका. सिर्फ असर इसलिए नहीं पड़ा है कि जाने ज़ाय हो गई, बल्कि अननेसेसरली एक रिलीजन के ऊपर चीज़ निगाह उठती है, जबकि रिलीजन हमारा पीस टीच करता है. हमारा रिलीजन दहशतगर्दी किसी सूरत में चेंज नहीं करता. और न सिर्फ ये, खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है और वही है जो कि आपसे ज़िंदगी ले सकता है. ये एक इंसान के हाथ की चीज़ नहीं है कि आदमी किसी की जान ले ले और फिर समझे कि वो जन्नत में जाएगा.
दुरुस्त. तो डॉक्टर साहब, हर वाक़े से कुछ हमें सबक भी मिलते हैं, तो क्या मतलब एक, ये दुरुस्त आपने कहा कि एक अमरीकी की हैसियत से हम सोचते हैं जो यहाँ के अमरीकी शहरी हैं, बल्कि शुरू में मैंने ये बात की थी कि मैंने पेशावर के वाक़े का हवाला दिया था कि ये ज़रूरी नहीं कि वाक़या पेरिस में हुआ है या न्यूयॉर्क में हुआ है. जब पेशावर में बेगुनाह लोगों को मारा था तो पूरी दुनिया में उसका रद्द अमल हुआ था. तो इसी तरह इस वाक़े का भी जो रद्द अमल पूरी दुनिया में हुआ है और रहेगा काफ़ी दिनों तक, तो ये मुझे बताइए कि इस वाक़े से ख़ास तौर पर अक़लियत को, यानी जब हम किसी कम्युनिटी में आते हैं और रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मतीन उमर मतीन का ताल्लुक एक अक़लियती उससे था कि वो अफ़गानी निजात अमरीकी थे, मुसलमान थे, तो क्या सबक सीखना चाहिए अक़लियतों को इससे कि किस तरह ज़म होना चाहिए सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम अपने बच्चों को क्या किस तरह करें सिखाएँगे बात.
इसके अंदर आई थिंक सबसे बड़ा सबक लेना जो चाहिए वो यही लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं.
जी,
दो तीन चीज़ें इसके अंदर ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ये हैं कि एक तो हम लोगों की डिज़ायर्स जो हैं अपने बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं और उससे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो फील करते हैं. दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल से हम लोग अपने बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं खर्च कर रहे हैं कि हमें अंदाज़ा हो कि उनके दिमाग के अंदर की सोच क्या है. अगर हम उनके साथ ज़्यादा टाइम खर्च करें और हम ऐसी बातें जो कि आम तौर पे लोग नहीं करते हैं, अगर हम उनको सामने निकाल के लाएं और सोचें, पूछें उनसे कि दिमाग पे तुम्हारे क्या क्या बातें हैं, क्या बातें हैं जो कि तुम्हें तकलीफ़ देती हैं, क्या बातें हैं जो कि जिसका असर तुम्हारे ऊपर होता है, और उन बातों को सामने रख के लाएं और माँ बाप और बच्चों में कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट हो, तो मेरे ख्याल से कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है. अब मेरे ख्याल ये नहीं है कि भाई ये हर बात का इलाज यही है. बाज़ वक्त आदमी का कि अंदर मेंटल इलनेसेस होती हैं जिसका कि कोई पर से सिर्फ बातचीत करने से इलाज
नहीं हो सकता. बिल्कुल,
ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आदमी को अंदाज़ा हो कि बच्चे की टेंडेंसीज, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड टेररिस्टिक आइडियाज, बट इवन दहशतगर्दी की तरफ हैं, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि माँ बाप खुद स्टेप लें, और खुद अगर स्टेप लेके नहीं करेक्ट हो पा रही है तो दे शुड गेट हेल्प आइदर फ्रॉम द प्रॉपर अथॉरिटीज और मेडिकल हेल्प और वट एवर काइंड ऑफ हेल्प. लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो ये है कि कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स नीड्स टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली.
इसमें एक बात और जो ہمیں اس خاص بالخصوص اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ اس میں ایک سیکچوئل اورینٹیشن کا سوال بھی اٹھا ہے کہ کیا متین جو تھے وہ خود جو گے کلبز وغیرہ میں جاتے تھے تو کیا ان کے اندر اپنے اندر یہ ٹینڈنسی تھی؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کیونکہ میں نے امریکہ میں کافی عرصہ گزارا ہے تو چند سال ایک عشرے پہلے تک یہاں بھی ایک بہت بڑا ٹیبو تھا کہ آپ ماں باپ نہیں بات کرتے تھے اور بہت شرمندہ ہوتے تھے اگر ان کے بچے میں اس طرح کی کوئی ٹینڈنسی ہوتی تھی. تو ہمارا معاشرہ کیونکہ نسبتاً زیادہ قدامت پسند ہے جہاں سے لوگ آئے ہیں جنوبی ایشیا سے اور ایشیائی ملکوں سے, تو کس طرح اس موضوع کو کس طرح ماں باپ اوپن کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟
دیکھیے یہ پھر بات اسی پہ آ جاتی ہے کہ کمیونیکیشن بٹوین چلڈرن اینڈ پیرنٹس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دوسری بات, بچے کو اتنا کمفرٹیبل ہونا چاہیے اپنے اماں ابا سے اور باپ ماں کو بچوں کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل ہونا چاہیے کہ جو بھی ٹاپک وہ ڈسکس کرنا چاہے وہ ڈسکس کر سکے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مانا کہ یہ بات صحیح ہو یا نہیں ہو لیکن اس کے اوپر ایسا سیویئر ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ آپ سے بات کر ہی نہ پائے.
درست.
تو اب ہمیں اس کا جواب تو بہت لمبا ہے لیکن میرا خیال یہی ہے کہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ماں باپ کے پاس ٹائم کم ہے بچوں کے لیے اور بچوں کے پاس دوسری ڈسٹریکشنز ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچے ڈرتے ہیں ماں باپ سے کہ اگر میں اس قسم کی بات ان سے کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو بچوں میں وہ ڈر آپ کو اپنا بچوں کے ساتھ اتنا کمیونیکیٹ کرنی چاہیے کہ آدمی بالکل ان کے ساتھ میں وہ آپ سے فریلی بات کر سکیں اس بارے میں کہ آپ بغیر غصے اور خفگی کے.
اچھا, آپ کے اس پہ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے آپ کے بچوں کا بھی یاد آیا کہ پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے ہم نے بات کی تھی آپ کے بچوں کی. انجم کے پاس بڑی اچھی سی تصویریں ہیں آپ کے قصبے کی بھی, خود آپ کے خاندان کی بھی, ہم اپنے سننے والوں کو وہ بھی دکھانا چاہیں گے. لیکن اس وقت آپ کا سب سے چھوٹا بچہ جب آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو 10 سال کا تھا. تو اب آپ بتائیے اپنے بچوں کی پروگرس, بتائیے کہاں پر ہیں. پہلے تو بیگم صاحبہ کو آپ نے الگ کر رکھا تھا اپنی, وہ جو مجھے بڑی حیرت ہے کہ وہ کیسے تیار ہوئیں کہ وہ رہتی تھیں ڈیلس میں بچوں کی وجہ سے, لیکن ظاہر ہے بچوں کے لیے ماں باپ ہمیشہ قربانیاں دیتے ہیں.
تو بات وہی آ جاتی ہے, قربانی دینے کی بات آ جاتی ہے.
جی,
وائف بھی آپ کو پتا ہے کہ فزیشن ہے لیکن انہوں نے اسی لیے اپنا چھوڑا کہ وہ کام کر بچوں کے ساتھ ٹائم خرچ کرنا چاہتی تھی. باپ بھی مصروف اور ماں بھی مصروف از الٹیمیٹ سبسٹریٹ فار ڈیزاسٹر. باوجود اس کے مشکل اٹھانی پڑی لیکن یہ کہ خدا کا شکر ہے اس میں کافی امپروومنٹ آ گیا کیونکہ اب بچے بڑے
ہو گئے. تو ایک ہمارے سامنے تصویر ہے, وہ میرے خیال آپ پہلی دفعہ جب میئر منتخب ہوئے تھے, ایک وکٹوریا جس کو کراچی میں کہا جاتا تھا, آپ لوگ بڑی شان سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, امی ابو بھی ہیں. تو یہ بتائیے کہ میئر ہونا کیا معنی رکھتا ہے ایک شہر کا؟ مطلب ہمارے تصور میں تو فلمیں وغیرہ دیکھ کے ایک بڑا بھاری بھرکم تصور ہے میئر کا, تو آپ ہمیں بتائیے کہ کیسا لگتا ہے میئر ہونا آپ کو اور خاص طور سے آپ کے بچوں کو.
دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کے اندر بچوں کے اوپر تو یہ بات ضروری تھی, میں نے ان کو پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ اس کو غرور کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ سب ٹیمپرری پوزیشنز ہوتی ہیں. آپ الیکٹ ہوئے, آپ نے کام کیا اور کسی دن آپ کی یہ پوزیشن ختم ہوگی, تو آدمی کو اس قسم کی چیز دماغ میں آنی نہیں دینی چاہیے کہ میرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا یا یہ میں کوئی بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں. نہیں, وی آر آل پبلک سروینٹس اینڈ دیٹ از دا انٹینشن آف بینگ دا میئر اینڈ دیٹ از دا انٹینشن آف می اینڈ دا انٹینشن از ٹو امپروو یور کمیونٹی. تو اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بیکاز آبویسلی آپ کو یہاں کا سسٹم پتا ہے, یو نو پریزیڈنٹ آف دا کنٹری, گورنر آف دا اسٹیٹ اینڈ میئر آف دا سٹی.
بالکل
اچھا کیوں نہیں لگتا, لیکن یہ کہ میں اپنے دماغ میں کبھی اس بات کو آنے نہیں دیتا ہوں کہ یہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن گیا. نہیں, میں ویسی آدمی ہوں جیسے کہ میں پہلے تھا, میں پہلے بھی ڈاکٹر تھا اور ابھی بھی ڈاکٹر ہوں. میں پہلے بھی انٹینشن لوگوں کی خدمت کرنے کا تھا اور لوگوں کے لیے سٹی کو امپروومنٹ تھا اور ابھی بھی وہی انٹینشن ہے بالکل.
اچھا, پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے, جنوب ایشیا میں بلکہ عمومی طور پہ, کہ جہاں کوئی شخص لگا بڑے عہدے پر تو سوچتے ہیں خاص طور پہ اس طرح کی پوزیشنز میں بھی سفارش کروانی ہے تو ذرا ارجمن ہاشمی صاحب سے کروا لو, وہ تو میئر لگے ہوئے ہیں آج کل. تو کچھ سفارشیں وغیرہ آتی ہیں آپ کے پاس بھی؟
دیکھیے سفارشیں کیوں نہیں آتی, آپ دنیا میں سب جگہ پہ رہتے ہیں, انسانی اور انسان میں کمزوریاں ہیں اور سفارشیں آتی ہیں بالکل. لیکن یہ کہ डिसीजंस जो होते हैं वो उस चीज पे होने चाहिए कि दे शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। आप लोग देख चुके हैं उन मुल्कों का हाल जहाँ पे के डिसीजंस मेरिट पे नहीं लिए जाते बल्कि सिफारिशों पे लिए जाते हैं। अगर वही चीज हम यहाँ पे करने लग जाएं तो फिर यहाँ में और दूसरी जगहों में फर्क क्या रहेगा? इसलिए आती है सिफारिशें लेकिन उनका जवाब है और जवाब उनका सिंपल यही है कि अगर चीज मेरिट पे आएगी तो वो की जाएगी और अगर चीज का मेरिट नहीं है तो वो नहीं की जाएगी।
तो मेयर कितना बाइख्तियार होता है?
मेयर बाइख्तियार होता है
यानी कितनी अथॉरिटी है मेयर की?
मेयर की अथॉरिटी काफी होती है बिकॉज़ यू आर ऑब्वियसली
आप डर डर के जवाब दे रहे हैं कि कहीं मैं भी सिफारिश भेजने वाली ना हूं आपको। मैं वैसे ही इतला के लिए जानना चाहती हूं।
नहीं, पावर होती है बहुत ऑब्वियसली और इट डिपेंड्स कि हाउ मच यू वांट टू एक्सरसाइज योर पावर। लेकिन ये कि ऑब्वियसली इट्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन। आप हर एसेंशियली हर डिपार्टमेंट आपके अंदर होता है, सिटी काउंसिल के और मेयर के अंदर होता है, तो पावर बहुत होती है। लेकिन ये कि पावर को सही तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे जरूरत हो इस्तेमाल करें और जहाँ पे नहीं जरूरत हो उस पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं।
तो डॉक्टर साहब, आपने तीन मेयर जो आपकी थी मेयर रहने की, अभी भी आप हैं, क्या तब्दीली, सबसे वाज़े तब्दीली आप अपने शहर में क्या लाए? क्योंकि मुझे यकीन है आपने बहुत कोई ना कोई ठोस काम किया होगा।
जी देखिए, तब्दीलियाँ बहुत सारी आई हैं लेकिन जो सबसे बड़ी तब्दीली मैं आपको बताऊँगा वो वही है कि काम सिटी में अब मेरिट पे होते हैं।
अच्छा,
इस बात पे नहीं होते कि मैं कोई अमीर आदमी है या कोई गरीब आदमी है या कोई किसी का जानने वाला है या कोई किसी का जानने वाला नहीं है। सिटी के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं तो वो इस बात पे दिए जाते हैं कि अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और इट हैज मेरिट्स ओवर अदर्स, देन दैट्स हाउ वी डू इट। एक तो सबसे बड़ी बात यह। दूसरी बड़ी बात जो मैं कहूँगा वो बहुत जो चेंज आया है वो ये आया है कि एक जो पाकिस्तानी होने का या मुसलमान होने का जो इम्प्रेशन सिटी में था वो बिल्कुल बदल गया है। हमारी सिटी में अप एंड डाउन तो ऑब्वियसली हर सिटी में होते हैं लेकिन यहाँ पे इम्प्रेशन पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का बहुत फ़र्क है कंपेयर टू अदर प्लेसेस दैट यू विल सी। तो आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज चेंज कि एक आदमी जो कि देखने में मुख्तलिफ है, बात करने में मुख्तलिफ है, चर्च नहीं जाता, वो मेयर है और बार बार इलेक्ट हुआ है, तो लोगों में ये चेंज आया है कि लोग समझ गए कि काम जो होते हैं वो आदमी की अहलियत की बेसिस पे होते हैं, इसकी बेसिस पे नहीं होते कि वो कहाँ से आया है
और या उसका मजहब क्या है
दुरुस्त। बहुत बड़ा, क्योंकि बहरहाल यू नो दिस इज नॉर्थ ईस्ट टेक्सास व्हिच इज अ वेरी बैप्टिस्ट एरिया, तो उसके अंदर ये बड़ा चेंज देखेंगे आप। दूसरी, फिर सिटी के अंदर बड़े चेंजेस आए। सिटी डिपार्टमेंट्स हैव बिकम मच मच मोर एफिशिएंट, दे हैव बिकम मच मोर फ्रेंडलियर टू द रेजिडेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। फिर उसके अलावा हम लोगों ने बड़े चेंजेस किए सिटी के अंदर, सफाई बहुत कम में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है।
अच्छा।
सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चेंज किया है सारा, जिसमें के सारे नए वाटर पाइप लग रहे हैं, नए सुअर पाइप लग रहे हैं, अब हमारा नया ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे और नई सड़कें बनवा रहे हैं सिटी के लिए।
अच्छा।
और ये सब उस सूरत में किया है हमने कि हमने अपनी सिटी में टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं टैक्सेस, बल्कि हमने हर साल पिछले सालों में हर साल तकरीबन कम ही किए हैं, बढ़ाए नहीं है।
तो कितना टैक्स है आपके?
हमारा टैक्स परसेंटेज वाइज नहीं है बिल्कुल, हमारा इट इज 0.50 है।
फिर तो शॉपिंग करनी चाहिए पेरिस में जाके ताकि टैक्स कम लगे। अच्छा, ये बताइए कि बच्चे आपके जो हैं प्रोफेशन के इंतखाब के लिहाज से, वो आपके मेयर होने से ज़्यादा मुतासर हैं यानी सियासत में जाना चाहते हैं या आपके मेडिकल का जो प्रोफेशन है, बच्चे क्या करते हैं आपके?
इसके दो जवाब हैं। एक तो मैंने आपसे पहले कहा कि मेयर की पोजीशन टेम्प्रेरी पोजीशन होती है, सारी इलेक्टेड पोजीशन होती हैं, तो इस चीज को अपना प्रोफेशन बनाना
नहीं, मैंने कहा सियासत में जाने से, ज़ाहिर सियासत में आना तो है ना, मैंने ये पूछ रहा।
बिल्कुल, सियासत में तो सबका इंटरेस्ट है बिल्कुल, लेकिन बड़ा बेटा मेरा डॉक्टर बन रहा है, दूसरा बेटा मेरा जो है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट है और तीसरा बेटा अभी मेरा 10वीं जमात में है।
अच्छा।
लेकिन इंटरेस्ट में हर एक का इंटरेस्ट कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट है, तो जो डॉक्टर है वो भी पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिक्स में, जो 10वीं जमात में वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, काउंसिल मीटिंग में आते हैं, और जो मेरा दरमियान का बेटा है जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो सिटी के अंदर इवेंचुअली उसका भी इरादा है कि वो इलेक्शन लड़ेगा किसी पोजीशन के लिए जरूर।
अच्छा, तो इसमें मेयर के इलेक्शन की भी कोई हद मुकर्रर है या आप हमेशा लड़ सकते हैं?
जी नहीं, मैक्सिमम आप 3 टर्म्स कर सकते हैं विच इज 6 साल
जी,
उसके बाद में आप लड़ सकते हैं दोबारा इलेक्शन, लेकिन आपको 1 साल का ब्रेक लेना जरूरी होता है। सो वी आर टर्म लिमिटेड टू 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक एंड देन यू कैन रीरन।
तो आपका ब्रेक लेने का टाइम आने वाला है 1 साल
का? ब्रेक लेने का बिल्कुल इंशाल्लाह अगली मई में मेरा ब्रेक का टाइम है।
अच्छा, बहुत शुक्रिया अर्जुमन हाशमी साहब, आप प्रोग्राम में आए, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ थे, आपने वक्त निकाला, तो बहुत शुक्रिया, और आइंदा हमें उम्मीद है कि आगे और भी आपसे हम बातें कर सकेंगे, तो खुदा हाफिज़। सामिन, डॉक्टर अर्जुमन हाशमी हमारे साथ थे पेरिस टेक्सस से, और हमारे एक बहुत ही अच्छे मेहमान दूसरे डॉक्टर अरशद आरिफ खान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब वही सवाल जो मैंने इनसे पूछा था अभी अर्जुमन हाशमी साहब से, यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं तो ये तो एक नफसियाती मसला है बहुत बड़ा लोगों के लिए, और तो इस तरह के केसेस भी आपके पास आते हैं और आप डील करते हैं उनसे?
जी बिल्कुल आते हैं, लेकिन तादाद उनकी बहुत कम है, बहुत अच्छा। कम तादाद है उनकी।
तो उसकी क्या वजह है, लोग शर्माते हैं आने से?
एक तो ये है कि शर्माते हैं आने से, और उन्होंने अपनी एक साइलेंट कम्युनिटी बना ली है
जी,
जो इंटरेक्ट नहीं किसी से कर पाते हैं। और उसमें हमें एक चीज ये देखना पड़ता है कि जब बात हो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो, तो उसमें बहुत से और भी नफ्सियाती अमराज हैं जिनका वो शिकार हो सकते हैं, और हमें लगता है कि नहीं इनको सेक्सुअल डिसओरिएंटेशन हुई है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, हमें लग रहा है कि उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं, ताकि उनको देख सके कि ये किसी और मर्द की अलामत नहीं है। क्योंकि मेरे पास मुझे याद है एक लड़की थी कि एक लड़की थी जो लड़कों के कपड़े पहनती थी, लड़कों की तरह बिहेव करती थी, हर चीज लड़कियों की तरह कर रही थी।
अच्छा,
तो बाय चांस ही वो लेके आए, तो उसको एक नफ्सियाती तकलीफ थी जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो फिर उसका इलाज जब चला स्किज़ोफ्रेनिया का, तो आस्ता आस्ता उसमें फर्क आ गई, और इस वक्त वो हम ये नहीं कह सकते 100% ठीक है, लेकिन 80% तक वो ठीक हो गई और घर के काम भी ठीक तरीके से कर रही होती है।
अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बल्कि पहले पूछा था उस वक्त आपको मेरी कॉल पर आवाज़ नहीं आ रही थी, कि जो हम आपकी दिखा रहे थे, हमारे पास कुछ फोटोज थे आपके, तो उसमें एक गाड़ी थी जिसका शीशा टूटा हुआ था, तो वो क्या किसी ने जान के तोड़ा था वो तस्वीर जो आपने हमें भेजी थी, क्या वजह थी उसकी?
वो बस बेसिकली दिखाना चाहता है कि कभी काम कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कश्मीर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जोन में आता है, तो कभी पत्थरबाजी में भी हम फंस जाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में।
अच्छा,
तो लेकिन फिर भी हमारा ये मिशन है चलता रहता है।
अच्छा, तो आप जितने भी यानी चीजें जितनी केसेस आप देखते हैं, उसमें क्या सबसे बुनियादी चीज जो है वो नशे से लोगों को निकालना है, आपका बुनियादी जो मकसद है वो यही है या कुछ और?
जी 60-70% तो यही मकसद है, लेकिन 30%, क्योंकि यहाँ औरतों के लिए कोई मखसूस अस्पताल नहीं है जो कि ज़हनी अमराज की तकलीफ में मुबतला है, तो वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनको समझते हैं कि उनकी बदनामी हो जाएगी।
अच्छा।
अपने गांव में, अपने जिले में, तो वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं। तो हमने जानबूझ के इसका नाम रखा है शहर वेलफेयर सेंटर, मेडिकल सेंटर, ताकि कोई भी यहाँ आ सके, चाहे वो औरत हो चाहे वो नशाई हो, तो उसको स्टिग्मा ये ना हो जाए कि कोई देखे कि कहे कि अरे आप तो जा रहे थे साइकेट्रिक हॉस्पिटल, आप क्या पागल हो या कुछ हो, क्योंकि यहाँ औरतों में एक जो उभरता रुझान है बदकिस्मती से, वो ये है कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा है और घरेलू तशद्दुद का वो शिकार हो जाती है कश्मीर में।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपकी मैं पढ़ रही थी जो आपके बारे में, तो उसमें था कि जो रैकी, सही मैंने कहा या गलत का, उसमें आप वाहिद हैं जिस मास्टर्स डिग्री है आपके पास, ये क्या है?
बेसिकली ये है कि एक एनर्जी का फ्लो होता है, जिस तरह हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में रूहानियत पर बहुत तवज्जो दी जाती है, ये भी एक आर्ट है, जापानीज आर्ट है, जिसमें कि नॉन इन्वेसिव है, हाथ नहीं लगाना पड़ता है या कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं है।
अच्छा,
जिसके पास से ये आर्ट वो हासिल करता है किसी उस्ताद से। जिस तरह
डॉक्टर साहब बदकिस्मती से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे पहुंच गया, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम हम आपके साथ करेंगे। सामिन इसके साथ ही शहनाज अजीज आपसे इजाज़त चाहेगी, आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की